नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने चीन से आयात किए जाने वाले मेटल कटर व्हील पर डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा लेवी लगाने की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा DGTR ने चीन से आयात किए जाने वाले इस उत्पाद की कथित डंपिंग की जांच की थी। महानिदेशालय ने सितंबर में शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। मेटल कटर व्हील का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में लोहा और अन्य सामग्री को काटने के लिए किया जाता है। राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा, केंद्र सरकार ने नामित प्राधिकरण के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। DGTR की सिफारिशों पर राजस्व विभाग अंतिम निर्णय करता है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों में पक्का यकीन रखते हैं तथा खासतौर से भू राजनीतिक जोखिमों के इस समय में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। येलेन ने सोमवार को PTI भाषा को एक विशेष साक्षात्कार में बताया, भारत के साथ हमारे बेहद मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करने के प्रयासों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों, वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षाओं और जलवायु वित्त पर चर्चा करेंगे। वो इस सप्ताह के अंत में अमेरिका भारत आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी में शामिल होने के लिए भारत आएंगी। इस दौरान वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। येलेन ने बताया, हमें निश्चित रूप से अपने व्यापार संबंधों को अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद है। हमें लगता है कि हमारे व्यापार में वृद्धि की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिससे दोनों देशों के कामकाजी वर्ग को लाभ होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि अगले 2-3 महीनों में एक नई तकनीक लाई जाएगी, जिसमें ट्रैक्टर में मशीन लगाकर खेत में पराली का इस्तेमाल बायो बिटुमन बनाने में किया जाएगा। गडकरी ने कुछ सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद आयोजित कार्यक्रम में कहा कि किसान अन्नदाता होने के साथ ऊर्जादाता भी बन सकते हैं और वो बायो बिटुमेन बना सकते हैं, जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जा सकता है। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बचे हुए उसके ठूंठ को पराली कहा जाता है। गडकरी ने कहा, मैंने एक नई तकनीक की रूपरेखा पेश की है, जिसे हम 2-3 महीनों में जारी करेंगे। इस तकनीक में ट्रैक्टर पर लगी एक मशीन से किसानों के खेत पर जाकर पराली से बायो बिटुमन बनाया जाएगा, जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम की संचालक 197 कम्युनिकेशंस का एकीकृत शुद्ध घाटा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़कर 593.9 करोड़ रुपये का हो गया। पेटीएम ने सोमवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध घाटा 481 करोड़ रुपए था। पेटीएम की वित्त वर्ष 2022-23 की सितंबर तिमाही में एकीकृत परिचालन आय 76% बढ़कर 1914 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एक साल पहले इसी तिमाही में 1086.4 करोड़ रुपए थी। अरबिंदो फार्मा की इकाइयां विनिर्माण खामियों के चलते अमेरिकी बाजार से विभिन्न उत्पादों को वापस ले रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने यह जानकारी दी। अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासक की ताज़ा प्रवर्तन रिपोर्ट के अनुसार न्यूजर्सी स्थित अरबिंदो फार्मा USA इंक क्रिनापिल और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट की 9,504 बोतलें वापस ले रही है। इस दवा का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है। USFDA ने एक अलग बयान में कहा कि अरबिंदो फार्मा की इकाई आरोमेडिक्स फार्मा LLC अमेरिकी बाजार से फोंडा पारेनिक्स सोडियम इंजेक्शन की 11,520 इकाइयों को वापस मंगा रही है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 7,800 करोड़ रुपए हो गया। ये वित्तीय परिणाम कंपनी की बिजनेस टू बिजनेस इकाई फ्लिपकार्ट इंडिया और B2C ई कॉमर्स इकाई फ्लिपकार्ट इंटरनेट के प्रदर्शन पर आधारित है। फ्लिपकार्ट ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में ये जानकारी दी और बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों इकाइयों का संयुक्त घाटा 5,352 करोड़ रुपए था। फ्लिपकार्ट इंटरनेट का घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 2,907 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 4,399 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसमें फ्लिपकार्ट समूह की कंपनियां जैसे मिंत्रा, इंस्टाकार्ट आदि का वित्तीय प्रदर्शन भी शामिल है। हालांकि फ्लिपकार्ट की शुद्ध आय 2021-22 में लगभग 20% बढ़कर लगभग 61,836 करोड़ रुपए हो गए। इसमें फ्लिपकार्ट इंडिया ने 51,176 करोड़ रुपए का योगदान दिया और फ्लिपकार्ट इंटरनेट का योगदान 10,660 करोड़ रुपए रहा। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में ई कॉमर्स कंपनी की संयुक्त शुद्ध आय 51,465 करोड़ रुपए थी। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में सक्रिय रियल एस्टेट कंपनियों को उच्चतम न्यायालय के सोमवार को आए फैसले से तगड़ा झटका लगा, जिसमें बिल्डरों को पट्टे पर दी गई जमीन की बकाया राशि पर वसूले जाने वाले ब्याज दर सीमा हटा दी गई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की तरफ से दायर उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के 10 जून 2020 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। इस आदेश में बिल्डरों पर बकाया राशि के लिए अधिकतम 8% की ब्याज दर तय की गई थी। इस मामले में प्राधिकरणों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र कुमार ने पीटीआई भाषा से कहा कि इस आदेश को वापस लेने की मांग उच्चतम न्यायालय ने मान ली है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।